If death strikes before I prove my blood, I swear I'll kill death. ये शब्द हैं कैप्टन मनोज पांडे की, परमवीर चक्र विजेता गोरखा राइफल्स की। ये वही जवान, ये वही अधिकारी हैं जिन्हें हम कहते हैं द ग्रेट इंडियन आर्मी। कितना सुकून मिलता है ना ये शब्द सुनते मात्र ही। भारतीय सेना, भारतीय सेना की गौरव गाथाओं की कोई सीमा नहीं है। एफएम डाउनटाउन के इस एपिसोड के अंदर मेरे यानी अमन के साथ आज मैं आपको एक भारतीय सेना की ऐसी गाथा सुनाने जा रहा हूं जिसने पूरी दुनिया को आवाक करके रख दिया था और हमारे पड़ोसियों को यह बता दिया था कि भारत अपने सैनिकों के ऊपर हुए किसी भी हमले का करारा जवाब दे सकता है और यदि उसकी क्षमता को परखने की कोशिश की गई तो शायद अंजाम बुरा ही होगा। 28 सितंबर 2016 को जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना। आज मुझे ये कहानी आपको सुनाते हुए बेहद गर्व महसूस हो रहा है कि मैं भारत का निवासी हूं और भारतीय सेना मेरी सेना है। सुनिए सर्जिकल स्ट्राइक की पूरी कहानी मेरी आवाज में एफएम डाउनटाउन के इस एपिसोड में, बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।
Hey, are you updating your wardrobe and confused from where to start? Then we have a suggestion for you. Shop with Bumaki. Bumaki have the best collection of t-shirts, hoodies, joggers and many more with charming colors like pine cone, lavender, light lilac, mauve desert, whispering blue and cameo green. Clothes you buy from Bumaki are bio-washed and have excellent quality of fabric. Not only this, Bumaki offers you free shipping across India, free face mask of your matching color and a free cotton bag. So why searching for any other brand when we have such exciting offers here? Visit www.bumaki.com or check out Bumaki on Instagram. Shop with Bumaki and build a new fashion sense. For more information, please check the description.
The Indian Army conducted surgical strikes last night at these launch pads. The operations were basically focused to ensure that these terrorists do not succeed in their design of infiltration and carrying out destruction and endangering the lives of citizens of our country. During these counter-terrorist operations, significant casualties have been caused to the terrorists and those who are trying to support them. The operations aimed at neutralizing the terrorists have since ceased. We do not have any plans for further continuation of the operations. However, the Indian Armed Forces are fully prepared for any contingency that may arise.
जब 29 सितंबर 2016 को भारत के मिलिट्री ऑपरेशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल रणवीर सिंह ने संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि भारत ने सीमा पार आतंकवादियों के ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है तो पूरी दुनिया आवाक रह गई। ऐसा नहीं था कि इससे पहले लाइन ऑफ कंट्रोल के पार सर्जिकल स्ट्राइक न की गई हो, लेकिन ये पहली बार था कि भारतीय सेना दुनिया को साफ साफ बता रही थी कि वास्तव में उसने ऐसा किया था। कारण था भारतीय सेना के उड़ी ठिकाने पर आतंकवादियों द्वारा किया गया हमला जिसमें 17 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 2 सैनिकों की बाद में अस्पताल में मौत हो गई थी।
Well, first up, we're getting some breaking news about a terror attack. Militants have attacked an army brigade headquarters in Uri. Intense firing is presently going on. We are getting to hear that even several explosions have been heard. The attack began at about 5:30 early this morning. Militants apparently breached the perimeter fence and they have entered the camp. So this is the news that we're getting you about an army camp being under the militant attack in Uri in Barabola in North Kashmir. We have with us Shuja Al-Haq to tell us more about this attack. Shuja, good morning. Just give us more details about this latest attack.
जैसे ये खबर फैली, दिल्ली के रायसीना हिल्स पर गतिविधियां तेज हो गईं। आनन फानन में अत्यंत गोपनीय वॉर रूम्स में भारत के सुरक्षा प्रबंधन की खुफिया बैठकें बुलाई गईं, जिनमें कम से कम एक बैठक में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ शामिल हुए। इंडियाज मोस्ट फियरलेस ट्रू स्टोरीज ऑफ मॉडर्न मिलिट्री हीरोज के सह लेखक राहुल सिंह बताते हैं। इस बारे में हमने बहुत सारे जनरलों और स्पेशल फोर्सेस के अधिकारियों के साथ बात की है और हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि इस बैठक में यही फैसला लिया गया था कि भारतीय सेना लड़ाई को दुश्मन के क्षेत्र में लेकर जाएगी, भारत चुप नहीं बैठेगा और इसका समुचित जवाब दिया जाएगा। सीमा पार आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी एलीट पैरा SF के 2IC मेजर माइक टैंगो को दी गई। ये उनका असली नाम नहीं है, सुरक्षा कारणों से इस पूरी किताब में उन्हें इसी ऑपरेशन के दौरान रेडियो नाम मेजर माइक टैंगोक्स के नाम से चिन्हित किया गया है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस के लेखक शिव अरूर बताते हैं, स्पेशल फोर्स के अधिकारी को क्रम डेला क्रम ऑफ सोल्जर्स कहा जाता है। ये भारतीय सेना के सबसे फिट, मजबूत और मानसिक रूप से सजग सैनिक होते हैं। इनके फैसला लेने की क्षमता सबसे तेज होती है और जहां जिंदगी और मौत का मामला हो इनका दिमाग बहुत तेजी से काम करता है। वो कहते हैं ना कि खतरनाक परिस्थितियों में भी जिंदा रहने की कला जिन्हें आती है वो किसी को नहीं। सेना का इस्तेमाल आमतौर पर रक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन स्पेशल फोर्सेस शिकारी होते हैं, उनका इस्तेमाल हमेशा आक्रमण के लिए ही होता है। इसी बीच दिल्ली में इस पूरे मामले को इस तरह लिया गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। नरेंद्र मोदी ने कोझिकोड में भाषण देते हुए उड़ी पर एक शब्द नहीं कहा। उन्होंने ये जरूर कहा कि भारत और पाकिस्तान को गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुषमा स्वराज ने भी उड़ी पर भारत के गुस्से का कोई इजहार नहीं किया। पाकिस्तान को ये आभास देने की कोशिश की गई कि सब कुछ सामान्य है, जबकि अंदर ही अंदर सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां जोरों पर थी। राहुल सिंह बताते हैं कि मेजर माइक टैंगो की टीम ने पाकिस्तान के अंदर अपने 4 सूत्रों को संपर्क किया। इनमें से 2 पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ग्रामीण थे और 2 जैश ए मोहम्मद में भारत के लिए काम कर रहे जासूस। चारों लोगों ने अलग अलग इन बातों की पुष्टि की कि आतंकवादियों के लॉन्चिंग पैड में आतंकवादी मौजूद हैं। माइक टैंगो के नेतृत्व में 19 भारतीय जवानों ने 26 सितंबर की रात 8:30 बजे अपने ठिकानों से पैदल चलना शुरू कर दिया और 25 मिनट में ही उन्होंने LOC को पीछे छोड़ दिया। टैंगो के हाथ में उनकी M4A1.56mm की कार्बाइन थी। उनकी टीम के दूसरे सदस्य M4A1 के अलावा इसराइल में बनी हुई टेवरटार 21 असॉल्ट राइफल्स लिए हुए थे। माइक टैंगो ने शिव अरूर और राहुल सिंह को बताया कि उन्होंने इस अभियान के लिए स्पेशल फोर्स में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ जवान चुने थे, लेकिन इस तरह के अभियान में कुछ लोगों का हताहत होना असंभव था। असल में इसकी संभावना 99.999% थी और उनकी टीम ये कुर्बानी देने के लिए मानसिक रूप से तैयार भी थी। टैंगो मानकर चल रहे थे कि वो इस अभियान का सबसे मुश्किल चरण होगा वापसी का, जब पाकिस्तानियों को उनके वहां होने की पूरी जानकारी हो चुकी होगी। 4 घंटे चलने के बाद टैंगो और उनकी टीम अपने लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। वो वहां से 200 मीटर की दूरी पर खड़े थे कि वो हुआ जिनकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। लॉन्च पैड से अचानक फायरिंग शुरू हो गई। 1 सेकेंड में तो उन्हें लगा कि क्या पाकिस्तानियों को उनके आने का पता चल गया है। सारे जवान 1 सेकेंड से भी कम समय में जमीन के बल लेट गए, लेकिन टैंगो के अनुभवी कानों ने यह अंदाजा लगा लिया कि यह अंदाजे से की गई फायरिंग है और उनका निशाना उनकी टीम नहीं है। लेकिन एक तरह से बुरी खबर भी थी, क्योंकि इससे साफ जाहिर था कि लॉन्च पैड के अंदर रह रहे आतंकवादी सावधान थे। टैंगो ने तय किया कि वो उस इलाके में छिपे रहेंगे और अपना हमला 24 घंटे बाद अगली रात में बोलेंगे। शिव अरूर बताते हैं कि यह ऑपरेशन का सबसे संवेदनशील और खतरनाक हिस्सा था। रात के अंधेरे में तो दुश्मन के इलाके में छिपे रहना शायद इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन सूरज चढ़ने के बाद उस इलाके में जमे रहना खासा जीवट का काम था। लेकिन उसने उन्हें एक फायदा जरूर होने वाला था कि उन्हें उस इलाके को पढ़ने और रणनीति बनाने के लिए 24 घंटे और मिलने वाले थे। टैंगो ने आखिरी बार सैटेलाइट को फोन किया और अपने CEO को संपर्क किया और फिर उन्हें ऑफ कर दिया। 28 सितंबर की रात दिल्ली में भारतीय कोस्ट गार्ड कमांड्स का वार्षिक भोज हो रहा था, लेकिन सभी चोटी के मेहमान रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और सेना अध्यक्ष जनरल धरबीर सिंह ने अपने अपने मेजबानों से माफी मांगी और सेना के मिलिट्री ऑपरेशन रूम में पहुंच गए ताकि वहां से उस समय शुरू हो चुके इस अभियान को दिल्ली से मॉनिटर किया जा सके। आधी रात को दिल्ली के 1000 किलोमीटर दूर टैंगो और उनकी टीम अपने छिपे हुए स्थान से निकलकर उन्हें लॉन्चिंग पैड की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। लॉन्च पैड से 50 गज पहले टेंगो ने अपनी नाइट डिवाइस विजन को देखा और दो आतंकवादियों को ठिकाने पर पहरा दे रहे थे, उन्होंने ऐसा देखा। राहुल सिंह बताते हैं कि टेंगो ने 50 गज की दूरी से निशाना लिया और एक ही ब्रस्ट में दोनों आतंकवादियों को धराशाही कर दिया। पहली गोली चलने तक ही कमांडोज के मन में तनाव रहता है, गोली चलने के बाद ये तनाव चला जाता है। इसके बाद तो गोलियों की बौछार करते हुए टेंगो और कमांडो लॉन्च पैड की तरफ बढ़ने लगे। अचानक टेंगो ने देखा कि दो आतंकवादी जंगलों में भागने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो भारतीय सैनिकों पर पीछे से हमला कर सके। टेंगो ने अपनी 9mm बैराट सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल निकाली और 5 फीट की दूरी से उन आतंकवादियों पर फायर किया और उन्हें वहीं मार गिराया। शिवरूर बताते हैं, माइक टेंगो और उनकी टीम वहां से 58 मिनट तक रही। उन्होंने पहले से ये बता दिया था कि वो शवों को गिनने में अपना समय बर्बाद न करें, लेकिन एक अनुमान के अनुसार 4 लक्ष्य पर कुल 38 से 40 आतंकवादी और पाकिस्तानी सेना के 2 सैनिक मारे गए। इस पूरे अभियान के दौरान तरह तरह के रेडियो साइलेंस रखा गया था।
Hey, are you updating your wardrobe and confused from where to start? Then we have a suggestion for you. Shop with Bumaki. Bumaki have the best collection of t-shirts, hoodies, joggers and many more. With charming colors like pine cone, lavender, light lilac, mauve desert, whispering blue and cameo green. Clothes you buy from Bumaki are bio-washed and have excellent quality of fabric. Not only this, Bumaki offers you free shipping across India, free face mask of your matching color and a free cotton bag. So why searching for any other brand when we have such exciting offers here? Visit www.bumaki.com or check out Bumaki on Instagram. Shop with Bumaki and build a new fashion sense. For more information, please check the description.
अब टेंगो के सामने असली चुनौती थी कि किस तरह वापस सुरक्षित भारतीय सीमा में पहुंचा जाए, क्योंकि अब तक पाकिस्तानी सेना को उनकी उपस्थिति का पता चल चुका था। राहुल बताते हैं कि माइक टेंगो ने हमें बताया कि अगर मैं कुछ इंच लंबा होता तो यहां आपके सामने बैठकर बात न कर रहा होता। पाकिस्तानी सैनिकों की गोली हमारे कानों के बगल से गुजर रही थी। जब ऑटोमेटिक हथियार की गोली कान के बगल से गुजरती तो आवाज पुट 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 करके आती। हम चाहते तो उसी रास्ते पर वापस आ सकते थे जिस रास्ता से हम वहां गए थे, लेकिन अपने जानबूझकर वापसी का लंबा रास्ता चुना। हम पाकिस्तानी क्षेत्र में और अंदर गए और फिर वहां से वापसी के लिए वापस मुड़े। बीच में 60 मीटर का एक ऐसा हिस्सा आया जहां की आड़ के लिए कुछ भी नहीं था। सारे कमांडोज ने पेट के बल चलते हुए उस इलाके को पार किया। टेंगो की टीम ने सुबह 4:30 बजे भारतीय क्षेत्र में कदम रखा, लेकिन तब वे पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। लेकिन तब तक वो वहां से पहले भारतीय मौजूद सैनिकों के उनको कवर फायर देना शुरू कर दिया था। सबसे बड़ी बात यह कि इस पूरे अभियान में टेंगो की टीम का एक भी सदस्य न तो मारा गया और न ही घायल हुआ। भारत की सीमा पार करते वक्त एक चीता हेलीकॉप्टर टेंगो के 15 कोर के मुख्यालय ले गया। उन्हें सीधा ऑपरेशन रूम में लाया गया, वहां जो उनके सीईओ ने उनको गले लगा लिया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ को देखते ही टेंगो ने उन्हें सैल्यूट किया। राहुल सिंह बताते हैं कि जब जनरल दुआ टेंगो से मिल रहे थे तो एक वेटर एक ट्रे में ब्लैक लेबल विस्की भरे हुए कुछ गिलास लेकर के जा रहा था। जनरल ने हुक्म दिया कि इन्हें वापस ले जाओ, सीधा बोतल ले आओ। तुम्हें पता नहीं कि ये लोग गिलास खा जाते हैं? जी हाँ, ये सच भी है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज को ग्लास खाने की ट्रेनिंग दी जाती है। वेटर तुरंत ब्लैक लेबल का बोतल ले आया। जनरल दुआ ने बोतल अपने हाथों में ली और टेंगो को अपना मुंह खोलने के लिए कहा। वो तब तक टेंगो के मुंह में विस्की डालते रहे जब तक उन्होंने बस नहीं किया। उसके बाद टेंगो ने भी जनरल दुआ को मुंह में सीधे बोतल से ही विस्की पिलाई। जब टेंगो उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल DS हुदा से मिलने के लिए उधमपुर गए तो विस्की का एक और दौर चला। राहुल बताते हैं कि टेंगो ने मन ही मन सोचा, कोई खाना दे दो, सारे दारू ही पिलाते रहोगे क्या। 20 मार्च 2017 को सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली टीम के 5 सदस्यों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। मेजर टेंगो को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। उस समय इस बात का ज्यादा प्रचार नहीं किया गया कि कीर्ति चक्र पाने वाले कोई और नहीं सर्जिकल स्ट्राइक के हीरो मेजर माइक टैंगो ही थे। धन्यवाद।